ओम नमस्ते जी। 267वीं श्रव्य कणिका सत्याप्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महानुभाव, गत श्रव्य कणिका में हमने चतुर्थ समुल्लास में आए हुए नियोग विषय को लेकर के पूर्व पक्षियों के द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों को बाइबल के प्रमाण देते हुए कि नियोग प्रथा केवल भारत में ही नहीं, यूरोपियन यहूदी और ईसाइयों में भी प्रचलित है, उनके सर्वमान्य धर्म ग्रंथों में इसका विहित निर्देश है, इस बात को लेकर के किया था। उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में भारत में नियोग परंपरा, महर्षि ने प्राचीन नियोग प्रथा को प्रस्तुत करने से पूर्व तीन विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है, जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य से रहना चाहे तो यह पद्धति उपद्रव रहित है। दूसरी बात, कुल परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी अपने कुल या स्ववर्ण के बालक को गोद ले लें। तीसरे विकल्प में नियोग के शास्त्रीय विधान का उल्लेख है। इसको केवल महर्षि दयानंद द्वारा प्रस्तुत विधान नहीं कहा जा सकता, अपितु आचार्य सायण ने भी ऋग्वेद भाष्य में उदीर्ष्व नार्य भी इस मंत्र पर भाष्य करते हुए नियोग का विधान किया है। कुहस्वित दोषा कुह पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण विधवा को देवर से नियोग करने का विधान करते हैं, ऋग्वेद 10:40:2। शयुत्रा शयने विधवेव यथा मृत भर्तृका नारी देवरम भर्तृभ्रातरम अभिमुखी करोति। जैसे पति के मरने पर विधवा देवर पति के भाई को अथवा द्वितीय वर से संभोग करती है और नियोगज संतान उत्पन्न करती है, यही दुर्गाचार्य का मत है। निष्कर्ष यह है कि पौराणिक भाष्यकार भी वेदों में नियोग का निर्देश मानते हैं, उनके ऋग विधान में भी नियोग का विधान है, अध्याय 3:44-45। किंतु नियोग के आलोचक कभी पौराणिक आचार्यों की आलोचना नहीं करते पाए गए। अगली बात आती है, नियोग की प्रथा का उल्लेख वेदों से लेकर पुराणों तक मिलता है और इसका इतिहास रामायण महाभारत स्मृतियों तक पुराणों तक में है, जो इसको तत्कालीन समाज स्वीकृत सहज प्रथा सिद्ध करता है। वशिष्ठ स्मृति अध्याय 18 में नियोग का विधान है। भागवत पुराण में नियोगज संतानों का विवरण दिया गया है। वैदिक कालीन राजा पृषदश्व के पुत्र रथीतर को संतान न होने पर उसने अंगिरा मुनि से नियोगज पुत्र उत्पन्न किए हैं, जो अंगिरस कहलाए। राजा कल्माशपाद की पत्नी मदयंती से ऋषि वशिष्ठ ने नियोग से संतान उत्पन्न की थी, स्कंद 9:9। बलि को संतान नहीं हुई, तब उनकी पत्नी सुदेशना से दीर्घतमा मुनि ने नियोगज संतान उत्पन्न की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केसरी और अंजना दंपति का पुत्र हनुमान नियोगज पुत्र था, जो देव समूह के किसी वायुवंशी वायुदेव का पुत्र था। इसी प्रकार बाली और सुग्रीव को भी क्रमशः इंद्र और सूर्य का नियोगज पुत्र वर्णित किया गया है, यह वाल्मीकि रामायण में देखा जा सकता है 1:17:10। महाभारत और प्रायः सभी पुराणों में इसका बार बार उल्लेख आया है, जबकि परशुराम और क्षत्रियों के युद्ध में अनेकों क्षत्रिय मारे गए थे तो क्षत्रियों की विधवाओं ने ब्राह्मणों से नियोग करके संतानें प्राप्त की थीं। महाभारत आदि पर्व अध्याय 104-177। महाभारत कालीन उदाहरण ग्रंथकार ने इस प्रसंग में प्रस्तुत ही किए हुए हैं, द्रष्टव्य महाभारत आदि पर्व 103-104 आदि अध्याय। गौतम धर्मसूत्र कहता है कि जीवित पति के असमर्थ होने पर अथवा पति के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नियोग करके संतान प्राप्त कर सकती है। वशिष्ठ धर्मसूत्र आदेश देता है कि पति की मृत्यु के बाद पुत्रहीन स्त्री का पिता या पति का भाई गुरुजनों एवं संबंधियों की अनुमति से नियोग कराए। बोधायन धर्मसूत्र विधवा या ऋण का नपुंसक पति के उत्पन्न नियोगज पुत्र का क्षेत्रज के रूप में वर्णन करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने लिखा कि पुत्रहीन राजा की पत्नी को और ब्राह्मण की पुत्रहीन पत्नी को समान गुण वाले व्यक्ति से नियोग करके संतान प्राप्त कर लेनी चाहिए। नारद स्मृति में भी नियोग से दो पुत्र प्राप्त करने का निर्देश है। इस प्रकार नियोग की लंबी परंपरा व इतिहास है। ग्रंथकार ऋषि दयानंद ने उसी परंपरा को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में नियोगज संतानों के दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। विशेष बात यह है कि सहज भाव से सम्मान और गौरव के साथ उनका नामोल्लेख किया जाता है। यहाँ कुछ प्रमाणों को मूल रूप में उद्धृत किया जा रहा है। पहला है, वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थलों पर हनुमान को वायुपुत्र कहा गया। उसका कारण और विवरण इन श्लोकों में मिलता है। सूर्यदत्तवरस्वर्ण सुमेरुर्नाम पर्वत यत्र राज्यम प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वैपिता तस्य भार्या भूवेष्ठा अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्याम वै वायुरात्मज वायुरात्मजमुत्तमाम। उत्तरकांड। इसका अर्थ है, सूर्य के प्रकाश के पड़ने से जिसका स्वरूप स्वर्णमय लगता है, ऐसा सुमेरु नामक पर्वत है जहां केसरी राजा राज्य करता है। उसकी पत्नी अंजना है। उसमें देववंशी वायु देव ने नियोग से हनुमान को उत्पन्न किया है। एक और उदाहरण, महर्षि व्यास ने माता सत्यवती के आग्रह पर निर्धारित विधि से जो नियोगज संतान उत्पन्न की उसका विवरण इस प्रकार है। ततोऽम्बिकायां प्रथमः नियुक्तः सत्यवाग ऋषिः सापि कालेन कौसल्या सुषुवेन्धं तमात्मजम् ततस्तेनैव विधिना महर्षेस्तामपद्यत अम्बालिकाम् ततः कुमारम सा देवी प्राप्त कालम अजी जनत पांडुम आदि आदि स जज्ञे विदुरो नाम कृष्ण द्वैपायनात्मजः धृतराष्ट्रस्य वै भ्राता पांडोश्चैव महात्मनः। महाभारत आदि पर्व। जिसका अर्थ है, माता सत्यवती ने व्यास ऋषि को पहले अंबिका से नियोग करने के लिए नियुक्त किया। समय आने पर उसने अंधे पुत्र धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। उसी नियोग विधि से महर्षि व्यास अंबालिका के पास गए। समय आने पर उसे पांडु नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार दासी में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने विदुर उत्पन्न हुआ। यह धृतराष्ट्र और पांडु का भाई था। एक और प्रमाण है, महाभारत में पांचों पांडवों को नियोग से उत्पन्न पुत्र बताया गया है। राजा पांडु संतान उत्पादन की शक्ति से रहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को स्वयं आदेश दिया, तस्मात् प्रहेश्याम्यद्यत्वाम् हीनः प्रजननात् स्वयं सदृशात् श्रेयसो वात्वं विद्यत्पत्यं यशस्विनी। आह्वयामास वैकुंती गर्भार्थे धर्ममच्युतम् सातम विहस्यमानापि पुत्रम देह्यम ब्रवीदितम संयुक्ता साहि धर्मेण योगमूर्ति धरेण लेभे पुत्रम वरारोहा सर्व प्राण भृतामद्वितम। जिसका अर्थ है, पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा, क्योंकि मैं संतान उत्पादन शक्ति से रहित हूं, इसी कारण तुम्हें किसी बराबर या उत्तम स्तर के व्यक्ति से संतान प्राप्त करने का निर्देश करता हूं। जाओ, तुम संतान प्राप्त करो। कुंती ने संतान प्राप्ति के लिए धर्मदेव नामक या किसी धर्मवंशी व्यक्ति का आह्वान किया। उसने उससे नियोगार्थ निवेदन किया कि आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें। धर्मदेव जो योगियों के वेश में थे, उसने संयुक्त होकर कुंती ने सब प्राणियों के हित करने वाले युधिष्ठिर को प्राप्त किया। आगे वायुदेव नामक व्यक्ति या किसी वायुवंशी से भीम और इंद्रदेव नामक या किसी इंद्रवंशी देव समुदाय के व्यक्ति से नियोग करके कुंती द्वारा अर्जुन नामक पुत्र प्राप्त करने का उल्लेख है। इसी प्रकार माद्री ने भी पति पांडु और बड़ी रानी कुंती की अनुमति लेकर अश्विन वंशी दो व्यक्तियों से नियोग करके नकुल और सहदेव प्राप्त किए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि वैदिक काल में नियोग प्रथा सहज स्वीकृत और समाज में मान्य थी। इस विषय को अगली श्रव्य कणिका में भी आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको यही विराम देते हैं। ओम।